मंगलं भगवान ईशो मंगलं गौतमोर्वशीयो मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं एष सुरासुर मनुसिंधु वंदितं दोर्गायिकमलं परमामि वैद्यमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। अल्प समय में अलिंग ग्रहण के 20 बोलों को 3 प्रवचनों में पूरा करना है। प्रारंभ में तो 6 थे, फिर 4 हुए, फिर 3 रह गए। ऐसे ही है समय की क्रम नियमितता, यही है। ये तो अपन सोचते हैं। मोना को धन्यवाद, संयोजक को भी धन्यवाद। वास्तव में अपने को चांस मिलता है। गुरुदेव श्री प्रातःकाल उठ करके जिन 175 बोलों का स्मरण करते थे, उसमें एक प्रकार से हम आप ये समझ लें कि पूरा द्वादशांग का सार समा दिया, कोई चीज बाकी नहीं रही। मेरे लिए अलिंग ग्रहण के 20 बोल की चर्चा है। बहुत प्रसिद्ध गाथा है प्रचंड सार की 172, और ये गाथा कुंदकुंद आचार्य के प्रत्येक ग्रंथ में मौजूद है। समय सार में 49, पंचायस्तिकाएं में 127, नियम सार में 46 और अष्टपौर भाव पौर में 64, और इसकी तो 172 है ही। नवला पुस्तक 3 में भी है, और मुझे ख्याल आता है लघु धर्म संग्रह में भी है। माने जब जब जहां जहां आचार्यों के सामने शिष्य ने ये प्रश्न रखा कि भगवान आखिर मूल चिदानंद आत्मा का शब्द तो उसने बोल दिया, चिदानंद आत्मा का समस्त परद्रव प्रभावों से भिन्नता दर्शाने वाला विभाग का साधन, स्वाश्रित साधन, असाधारण लक्षण क्या है। समय सार में 43 गाथा में आया कि कोई अध्यवसान को आत्मा मानता है, कोई कर्म नो कर्म को मानता है, कोई 8 कर्मों के बने खाट के समान मानता है, कोई मंद तीव्र अनुभव को मानता है। तो वहां पर ये गाथा में आचार्य ने जो बोल कहे वे 40 हैं, 5 इंद्रियों के और एक अव्यक्त का। ऐसे वहां पर 6x6 36 और अन्य संस्थान के 4 40। अलिंग्रहण का 1 बोल और चेतना गुणमय पना का 1 बोल वहां है। अब ये जो अलिंग्रहण के 20 बोल हैं, वो इस विवध्वनि का सार कहलाने वाला जो ग्रंथादिराज, दोनों ही सभी ग्रंथाधिराज समय सार अपनी जगह, ये दिव ध्वनि का सार, ये भी नाम दिया गुरुदेव श्री पर। परम वैज्ञानिक ग्रंथ है, हर चीज साइंटिफिक एनालिटिकल सिस्टमेटिक डिस्क्राइब्ड है। तो इसमें 172 गाथा कब आई, ये गे तत्व प्रज्ञापन की गाथा है। मैं गाथा पढ़ता हूँ, फिर उसको उसके बारे में चर्चा करते हैं कैसे आचार्य देव ने अलिंग ग्रहण के 20 अर्थ प्रतिपादित किए। अरसम रूप मगंधम अबत्तम चेदना गुण मसद्दम जान अलिंगहिणम जीव मन दिट संठाणम चेतना गुण गंध रूप रस शब्द व्यक्ति न जीव ने संस्थान नहीं। यहाँ पर आचार्य देव ने शिष्य के इस प्रश्न के लिए गाथा प्रस्तुत की कि 171 गाथा में कहा था ये औदारिक आदि शरीर, 5 शरीर जो है ये पुद्गल धर्ममय है, आत्मा मय नहीं है, आत्मा इनसे भिन्न है। तो आचार्य से उससे से पूछता है आखिर मुझे आप शरीर आदि परद्रव्यों से विभाग का साधन, समस्त परद्रव प्रभावों से विभाग का साधन, स्वयद्रव का असाधारण स्वय लक्षण क्या है, ऐसा मूल में अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखा। तो उसके लिए गाथा प्रस्तुत हुई। आप देखेंगे इस गाथा में कितने बोल नास्तिपरक हैं और कितना बोल अस्तिपरक। अरस और वो अगंध अव्यक्त अशब्द अलिंग्रहण अनिर्दिष्ट संस्थान कितने हो गए? अर स्वरूप अगंध अव्यक्त अशब्द अलिंग्रहण और अनिर्दिष्ट संस्थान सात बोल नास्ति परक है, एक अस्थि परक है चेतना गुणमय चेतना गुण मसद। और यहां पर वही टीकाकार अमृत चंद्राचार्य जिन्होंने समय सार आत्मख्याति में वे 40 बोल निकाले वहां पर अलिंग्रहण का एक ही बोल रखा था। यहां पर अलिंग्रहण ये प्रमेय अधिकार है, गेय अधिकार है। तो आत्मा गेय है कैसा? और जब गेय है तो ज्ञान के बिना कोई गेय नाम पाता है क्या? ज्ञान नहीं है तो किसको गेय कहा जाए? तो ज्ञान और गेय का स्वरूप भी इसमें समाया हुआ है। पहला तो ज्ञान अधिकार पूरा किया और उसका आत्मा का स्वाश्रित स्वभाव दीपक की तरह स्व पर प्रकाशक सिद्ध किया, नेचुरल उसका स्वभाव, स्वभाव तर्क नहीं होता। और उसके बाद ये तत्प्रज्ञापन में पूरा वस्तु का एनालिसिस करते करते जब ये गाथा है कि आखिर में तो आप वो बताओ, वो विशेषता जिससे मैं अपने आपका अनुभव करके और इन सब प्रदर प्रभावों से भिन्नता का अनुभव कर लूं, आनंद अनुभव प्राप्त कर लूं, धर्म प्रकट कर लूं। तो जब इस प्रश्न के जवाब में बात आई तो यहां पर अमृत चंद्र आचार्य देव ने जिसका नाम है तत्व प्रदीप का टीका, तत्व का प्रदीप करने वाली, समय सार का नाम आत्मख्या और ये गाथा 50 टीकाएं में उसका नाम है समय व्याख्या, वह 6 द्रव्यों का डिस्क्रिप्शन है यहां पर भी है। लेकिन ये बहुत वैज्ञानिक ढंग से आपको मालूम विश्व के सारे विश्वविद्यालयों में जैन दर्शन जहां पढ़ाया जाता है मात्र प्रवचन सार प्रिस्क्राइब। 1930 में एक इंग्लिश बुक जेल जैनी ने जो इंदौर हाईकोर्ट के जस्टिस थे है डॉक्टर उत्तम चंद पास मैंने जरा किया है, विदेश में भी उपलब्ध है, बढ़िया उन्होंने इसका अनुवाद किया है, मैं देख रहा हूं उसको भी। यानी पहले भी लोग इसके चाहने वाले रहे और मैंने सबसे पहले रामजी भाई के पास देखी थी 66 में, छोटी उम्र देते नहीं थी, तो इतना अच्छा लगा। जब लेकिन घर पर स्वाध्याय किया लगा अलिंग्रहण के बोल तो बहुत कमाल के, पहले तो सोचा ही नहीं था क्या है इनमें विशेषता, वो अपन चर्चा करते हैं। इसमें कहा अरस अरूप अगंध और अव्यक्त। अमृत चंद्र आचार्य देव ने यहां प्रवचन सार में अव्यक्त का अर्थ अस्पर्श लिया है और जबकि समय सार में अव्यक्त का शब्द अलग रखा और अस्पर्श को अलग से डिस्क्राइब किया, वर्णित किया। और उसमें यह बात बताई कि जड़ रस वाला नहीं है, अरस है, अरूप है। अभी आपको कर्म सिद्धांत ग्रंथों में आत्मा को कथनचित रूपी भी लिखा मिलेगा कर्म संबंध से, ये पढ़ते हैं ना अपन भगवान के नामों में, भगवान कैसे स्तुति करते हैं, दो गोरे दो सांवले दो हरियल दो लाल 16 कंचन वर्ण है मैं बंधु तने त्रिकाल, ये महान देह आदि से उनका ऐसा वर्णन किया जाता है। क्यों कहा गया जीव को? ये सब व्यवहार और कर्म संबंध के पीछे स्वाभाविक स्वभाव क्या है उसका, तो अरस नहीं है, अरूप नहीं है, अगंध नहीं है और अस्पर्श नहीं है, अपन उसको भी यहां ले रहे हैं अस्पर्श। और उसके बाद अशब्द, 5 इंद्रियों के विषय को पहले आउट किया और इंद्रियों को भी आउट किया समय सार में, तो 6 जो बोल लिए ना, क्यों आत्मा भिन्न है और अस्वरूप है, कि वो पुद्गल द्रव का गुण है तो वो पुद्गल द्रव नहीं है, पुद्गल द्रव का गुण रूप अस्वरूप नहीं है, और शरीर प्रणाम को प्राप्त ये द्रविंद्रियां जड़ पुद्गल की तो ये आत्मा है नहीं, हो नहीं सकता। तो दृष्टांत दिया आचार्यों ने समय सार 371 आदि गाथा में, जैसे एक घड़े के अंदर जलता हुआ दीपक रखा है और किसी ने घड़े को डंडा मारा, घड़ा फूट गया तो दीपक का क्या हुआ? कि कुछ नहीं हुआ, दीपक जल रहा है। उदाहरण बनाते और दीपक बुझ गया तो घड़ा फूट गया नहीं है, तो कहते ऐसा इस मिट्टी के घड़े में शरीरों में एक ज्ञान दीपक प्रज्वलित, घड़ा फूट गया मिट गया शरीर, इससे वो दीपक का कुछ क्षति नहीं होती और वो दीपक तो सदाकाल प्रकाशमय है, स्वयं पर प्रकाशक का लिए हुए है और वो दीपक एक कमरे से दूसरे कमरे में चला जाता है, दूसरे से तीसरे में, ऐसे चार गति 84 लाख योनी कमरों में घूम आता है, लेकिन उसका ज्ञान दीप सदाकार प्रज्वलित रहता है। तो ज्ञान और देह की बात इसमें जब आती है तो आचार्य देव अमृतचंद की जो बोल समय सार में समझाए, अब इसमें अलिंग ग्रहण पे आते हैं। एक एक शब्द में तो बहुत अपन कह सकते हैं, लेकिन समय कम, इसलिए मैं मुख्य उस विषय पर आता हूं। अर्स नहीं, अरूप नहीं, अगंध नहीं, अशब्द नहीं, अस्पर्श नहीं, ये 5 इंद्रियों के विषय अवट किए। देखो पुद्गल में 4 तो गुण हैं और इंद्रियां 5 हैं, उनके विषय भी 5 हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण है ना, ये आत्मा के गुण नहीं, अरूपी है। तो शब्द क्या है, तो उसका विश्लेषण पहले कराया जाए। ये कादाचित होने वाली स्कंदों की पर्याय, इसलिए उस शब्द को हमेशा आपको शब्द पर्याय लिखा मिलेगा। आप कह सकते हैं ना, एक एक इंद्री का विषय है तो कर्णेन्द्रिय का भी गुण उसमें होना चाहिए ना पुद्गल में, कि तो वो स्कंदों की एक विशिष्ट पर्याय होती है बस। ना अमूर्तिक द्रव्यों का गुण है, 132 गाथा पहले थे आचार्य, और ना मूर्तिक शुद्ध परमाणु का भी गुण है कि ध्वनि पैदा करे। लेकिन उस जाति के स्कंद होते हैं जैसे अपन भाषा वर्ण आदि कहते हैं शब्द पर्याय, तो कर्णेन्द्रिय का विषय बन जाता है। तो ये नहीं है। और अलिंग ग्रहण आवन नहीं। अब लिंग का अर्थ होता है कोई भी चिन्ह जो परद्रव्य हो, इंद्रिया हो, उनके विषय हो, अथवा कहना चाहिए ये पुरुष ये स्त्री ये शरीर के जो चिन्ह आकार है ये भी नहीं, अथवा जो अशुद्ध उपयोग राग रूप लक्षण बताया जाता है वही भी उसका लक्षण नहीं, इंद्रिया नहीं, मन नहीं, और जो जीवत तो 10 प्राण रूप है वही भी उसका लक्षण नहीं। इन सबको मिलाकर के इन 20 बोलों में लिखते हैं, क्या इंद्रिया नहीं, मन नहीं, और उपयोग लक्षण जो सामने आपने सामने पढ़ा है उसके भी उन्होंने कहा कि तुमने उपयोग लक्षण का बहुत दुरुपयोग किया है। तो पहले 5 बोल नास्तिपरक, 6वां बोल अस्थिपरक, अभी बोल हमने बोले नहीं है लेकिन स्वार्थ में सब बताना है, और 7 में से लेकर 11वें बोल तक उपयोग को बांध करके कहा कि ये उपयोग का वास्तविक लक्षण नहीं है। और फिर 12वें बोल में फिर इंद्रिया मन, 13वें बोल में फिर 10 प्राण आदि, फिर 14वें बोल में कि ये बाहर का ये पुरुष है स्त्री है ये चिन्ह आदि जो है लिंग योनि आदि ये भी कोई आत्मा की पहचान के चिन्ह नहीं, और उसके बाद फिर सर्वलोक व्यापी होगा ऐसा भी नहीं है। 15वां बोल अभी बोल नहीं बोले हैं, तो एक शॉर्ट आपको बता रहा हूं आपके ख्याल में क्या क्या चिन्ह इस आत्मा की नहीं हो सकते, फिर उनका एक एक बोल के द्वारा वो उसका उसकी पोल खोलेंगे समय कि तुम्हारी भ्रांति है। और 16वें बोल में कि मैं द्रव से भाव से मैं पुरुष हूं स्त्री हूं वेद वाला हूं द्रवेद भाव वेद आदि वो निकाला। फिर बाहर का देखो ये मुनि है नग्न दिगंबर है, देखो छुल्लक इलक है आरिका है, ये धर्म के वाह चिन्ह कहलाते हैं, बाहर में माने जाते हैं, ये भी कोई आत्मा का रूप स्वरूप नहीं है। इसके बाद वास्तव में 18, 19, 20वां बोल जो आत्मा मय है, लेकिन उनमें भी क्या होता है वो समझने का, क्या आत्मा में अनंत गुण है तो ये गुण भेद देखता है तो वो भी नहीं है। 19वां बोल में अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड ऐसा भी लिखा मिलेगा कहीं आपको, तो देखना है कि आत्मा ऐसा भी है वैसा भी है, तो अशुद्ध पर्याय का तो इसमें काम ही नहीं लिया। शुद्ध निर्मल पर्याय के भेद रूप भी आत्मा नहीं है। और 20वां बोल में कहेंगे तुमने जो अभी जो डॉक्टर साहब बता रहे थे ध्रुव अचल अनुपम, वो ध्रुव स्वभाव का यदि तुम्हारी पर्याय ने अवलंबन लिया तो मैं जो कल था उस पर्याय में था अभी हूं मैं वही हूं वही हूं, ये बात छोड़ो वही वही की बात बहुत हो गई, तुम्हें जो स्वाद प्रत्यक्ष हुआ निर्मल भीतरागी पर्याय प्रकट हुई 20वां बोल, तो शुद्ध पर्याय जितना ही आत्मा पर्याय जितना आत्मा का, क्यों कि तुमने बहुत गीत गाए आत्मा के, आगम में लिखा है ऐसा लिखा है ऐसा कहा है बहुत शब्द, वही आत्मा जो स्वाद आया गूंगा बोल ना सके लेकिन उसको स्वाद का अनुभव होता है, एक खट्टा है मीठा चरपरा कसायला, एक ज्ञान ज्ञान होता है कि नहीं होता। तो ऐसे ही खालिस प्योर कसाय से रहे जिसको निःशुद्धात्मा का अनुभव हुआ होता है, उस स्वाद कैसा है स्वसंविधान प्रत्यक्ष, उसको ऊर्ध करने के लिए आचार्यों ने इतने 20 भूल खोल के इसमें बताया। तो कहते वो स्वादित आत्मा है और क्या आत्मा था। तो मेरे से जीत भाई पूछते थे कि 20वां भूल शुद्ध पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल है कि नहीं, बहुत सारे पूछते हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, तो बताएंगे सब। तो शुद्ध निर्मल पर्याय आत्मा है, वो आत्मा कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं, इसे बहुत चर्चाएं अपने को आएंगी। अब देखिए पहले में जो आपको किताब दी गई है उसमें बोल लिखी है, ये तो हमने संक्षेप बहुत आपको कहना था वो बताया। उसमें आप देखिए और इधर आगम भी सामने है मेरे। तो पहले तो आचार्य देव ने जो एक जो बोल मैंने अभी छोड़ा है चेतना गुणमयपना, उसको भी कह देता हूं कि जो जड़ पदार्थ है चेतन उनसे भिन्नता का साधन, शिष्य ने पूछा था ना क्या भिन्नता है, तो कहे चेतनमयपना। और कहते समान जाति या समान जाति माने जीव जाति जाति के, वो समान जाति द्रव पर्याय की बात नहीं है, समान जाति जो जीव है एक जाति के उनमें और मेरे में मेरा लक्षण जुदा बताओ। तो कहते हैं स्वय द्रव्याश्रित चेतनमयपना वो अन्य जीवों से तुम्हें भिन्न पड़ता है। ये शब्द आचार्य ने कह दिया, क्योंकि गाथा में तो बहुत मरमर है, अपन बोलों पर रहते हैं। अब जब अलिंग्रह बोल शब्द आया तो अमृतचंद्राचार्य कहते हैं अलिंग्रही कहना था, अलिंग्रहण क्यों कहा, कि आत्मा किसी चिन्ह से ग्रहण करने योग्य नहीं, तो अलिंग्रह शब्द आता है। तो अलिंग्रहण क्यों कहा, तो जरूर कुंदकुंदाचार्य के देव मन में कुछ विशेष भाव इसके अंदर में रहा होगा बताने का। तो अमृतचंद्राचार्य ने उसको 20 बोलों में खोला और गुरुदेव श्री कहते हैं आपकी ताकत हो और बोल बना लेना, नहीं निकलेगी आपकी ताकत, कुछ बाकी रहेगी। तो देखो जो इसमें जो बोल लिखे हैं उनको मैं और अति संक्षेप में पहले आपको स्मरण रहे वो बता देता हूं। पहला, आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता। दूसरा, आत्मा इंद्रियों से जानने में नहीं आता, बिल्कुल संक्षेप आत्मा की बात चली ना, वैसे तो उसमें स्वयं पर भी सब घटेंगे। पहला, आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता। दूसरा, इंद्रियों से जानने में नहीं आता। तीसरा, इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं। एक्सप्लेन करेंगे अपन बाद में, पहले बोल थोड़े ख्याल में आते हैं। इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, इंद्रियों से भी अनुमान लगता है, यहां सकल हो चीटी यहां हो उसको ख्याल में आता है इधर कहीं तो है, अनुमान लगाते ना, इंद्रियों से भी अनुमान होता है और मन से भी होता है। तो इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं, कौन, आत्मा। चौथा, आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है, कैसा वो तो अनुमान ज्ञान से ही देह प्रमेय बन सकता है, ऐसा अनुमेय मात्र नहीं है। उसके बाद पांचवा, कि आत्मा की ताकत सिर्फ अनुमान लगा करके जानने की है, ऐसा अनुमाता है, कहते ऐसा अनुमाता मात्र भी नहीं है, यानी इसमें ध्वनि है अनुमेय है अनुमाता है इतना मात्र नहीं। तो ये सब इंद्रियां और मन आदि के संबंध वाली बातें पांच बोलों में आउट की और उनका लॉजिक देंगे, सब करेंगे अपन। और उसके बाद छठवें बोल में कहा ये आत्मा स्वभाव से प्रत्यक्ष ज्ञाता है, क्योंकि इसका स्वरूप लक्षण स्वसंवेदन है। न्याय में तो जीव का लक्षण स्वसंवेदन का, जगत में कोई जड़ पदार्थ संवेदन नहीं करता, सम्यक प्रकार वेदन संवेदन, दुख का चाहे सुख का, पहले वेदन करना जीव का लक्षण, और किसका, अपने दुख का अपने सुख का, के पर का, कि सब अपनी पर्याय में जो घटित होता है पर्याय में वेदन पर्याय का ही होता, अन्य का कुछ नहीं होता, वो अपेक्षा है। लेकिन यहां पर छठे भूल में स्वभाव से प्रत्यक्ष ज्ञाता है, यानी ज्ञान की स्वयं पर प्रकाशकृत शक्ति किसी कोई भी अन्य कारण से नहीं है, ये मूल वस्तु आत्मा का स्वय स्वभाव है। इस स्वभाव से प्रत्यक्ष ज्ञात है, इसका विश्लेषण अपन करेंगे इंग्लिश में। सात मास से ग्यारहवें तक मैंने कहा उपयोग लेते हैं। एक जीव ऐसा मानता है कि उपयोग गेहूं से होता है, गेह के अवलंबन वाला है, कहते गे के अवलंबन वाला उपयोग नहीं है, ये आत्मा का लक्षण नहीं बनता, ऐसा परावलंबी उपयोग लक्षण वाला आत्मा नहीं है, गे अवलंबी। और ज्ञान और गेय ना हो ये तो असंभव है, लेकिन वो गेयों से ज्ञान पर्याय नहीं है, उपयोग नहीं है। और उसके बाद आठवें भूल में ये उपयोग कहीं बाहर से नहीं लाया जाता, सोनगढ़ में मिलता है कि नहीं, देवलाली मिलता है कि नहीं, शिखर जी में, गिरनार जी में, पाली थाना में, कहां मिलता है? गुरु शिष्य को ज्ञान देते कि नहीं, लेन देन होता कि नहीं, कहीं बिकता हो तो खरीद लाए, तो बाहर से आने वाली चीज नहीं। तो गुरुदेव तो उसमें ये भी कहेंगे कि इंद्रभूति गौतम समोसरण में गया, सम्यक्त हुआ और अंतर्मूर्त में चार ज्ञान का धारी बन गया। ये ज्ञान कहां से आ गया? भगवान को देखने से आया कि अपने आत्मा में अपने को देखने से? अभी इसके सब विस्तार चलेंगे। तो ऐसा सोचता अचानक वृद्धि कहां से हो गई? शिवभूति मुनि था वो कितना जानते थे, छिलका भिन्न और दाल भिन्न, आत्मा भिन्न और सब भिन्न, और तत्व ज्ञानी थे। और कहते हैं जब शुक्ल ध्यान हुआ, शुक्ल ध्यान किसको होता है प्रवीण? शुक्ल चाहते पूर्विदा, जो पूर्विद हो जाता है वो शुक्ल ध्यान ही होता है। इतना ज्ञान कहां से प्रकट हो गया अचानक? तो गुरुदेव जी ने कहा अचानक कहीं से नहीं होता है, अचानक अगर मानते भी हो तो स्वभाव में से होता है, तो उसमें भरा पड़ता है, ख्याल में ना, तो ये बाहर से नहीं आता ज्ञान। नौवां भूल कि ज्ञान उपयोग की चोरी नहीं होती, हरण नहीं होता। कि आप डॉक्टर हो और मैं हूं कंपाउंडर, आप सो रहे, मैं आपका ज्ञान चुरा के भाग गया, मैं डॉक्टर बन गया और आप कंपाउंडर बन गए, पॉसिबल? ज्ञान धन की चोरी नहीं होती, हरण नहीं होती। दसवां भूल, जैसे सूर्य में कोई अंधकार नहीं है, ऐसी उपयोग लक्षण आत्मा में कहो या उपयोग लक्षण में, लक्षण में नहीं तो लक्ष्य में भी नहीं, लक्ष्य आत्मा और लक्षण उपयोग है, तो उपयोग लक्षण में ये मलिनता मोह राग द्वेष है ही नहीं उसमें। हम आप सोचें कभी अंधकार ने प्रकाश को देखा होगा? प्रकाश ने अंधकार को देखा होगा? नहीं। दोनों की सत्ता है कि नहीं? सत्ता है। एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। अंधकार बहुत परेशान था प्रकाश से, तथागत भगवान के पास पहुंचा फरियाद लेकर के, जहां याद हमकता है मेरे प्राण हरण लेता है। तथागत भगवान बोले मैं तुम्हारे साथ हजार अनुचर भेजता हूं, सेवक पकड़ के लाओ उसको, वो बैठा है कि आज तक नहीं आ रहा, दंड देने आएगा। तो जैसे सूर्य में उपराग मलिनता नहीं, ऐसे उपयोग लक्षण न लक्षण में नहीं तो लक्ष्य में भी नहीं। लक्षण तो लक्ष्य अभेद होता है, भेद करके समझाया जाता है। तो कहा कि सदा काल आत्मा उपयोग कैसा है? शुद्ध उपयोग स्वभावी है उसके, ये उपयोग के लक्षण। और ग्यारहवें बोल में ये उपयोग लक्षण आत्मा कर्मों से असंयुक्त है, असंबद्ध है, कि दोनों मिलकर के एक भेलसेल हो गया हो, व्यवहार का कथन को परमार्थ नहीं मान लेना। दूध पानी मिल गए एक हो गए, शक्कर घुल गई एक हो गए, हो नहीं सकते। या तो उपयोग कभी भी कर्म से संयुक्त हुआ नहीं, होता नहीं, होगा नहीं। जैसे मरकरी भरा रहता ना थर्मामीटर में, तो मरकरी ने वो क्या होते पारा ने कांच की दीवार को छुआ कि नहीं, तो ये फूट जाता है टूट जाता है, तो वो क्या करता है लुढ़कता है। अरे एक तो एक द्रव दूसरे का द्रवण पर्याय से अस्पर्श हुआ, ये तो अभी बहुत साठ में, पर इसके पर विस्तार में चलेंगे। कौसा बोल हो गया ग्यारहवा, पहले सामान बताया था थोड़ा विशेष किया, उसके बाद बारहवें में कहा अब फिर आए इंद्री मन में, अपन भोग भोगते हैं पांच इंद्रियों से, तो इंद्रियां भोग भोगती हैं, मैं इंद्रियों से भोग भोगता हूं कि भोग सकता हूं? कि इंद्रियों में ध्यान है तो कौन भोगता और कौन जानता है कि मैं इंद्रियों से भोग नहीं भोगता, मैं इंद्रियों के द्वारा भोग भोगने वाला उपभोक्ता नहीं हूं। मात्र में ज्ञान से उनको जानता हूं और जो समय सार आत्म ख्याति में जो 6 बोल दिए हैं अर स्वरूप आदि सबके, उसका 5वां बोल रखना और 6ठवां बोल कि समस्त दुनिया के विशेषों को एक साथ ग्रासीभूत करने की सामर्थ्य एक क्षणवर्ती तेरे ज्ञान पर्याय में बैठी है, लेकिन तू एक खंड खंड उनको जाने, ये तेरा स्वभाव नहीं है। और जब जानना भी हो गया होता है तो वो ज्ञान गेयों का ज्ञान होने पर भी ज्ञान गेय से तादात्म्य नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञान से ही तादात्म्य रहता है। इसलिए इंद्रियों मन के द्वारा मैं भोग नहीं भोगता। इनके भी दृष्टांत से बाद में स्पष्ट करेंगे। 13वां बोल, अपन कितने प्राण वाले हैं, कितने प्राण है रजनी भाई? 10 प्राण। चेतन भाई संगी पंचेंद्री है कि नहीं? अपन असंगी है क्या? नहीं, संगी पंचेंद्री है। पर्याप्त क्या? अपर्याप्त? पर्याप्त। अभी चली थी ना कर्णालियों की क्लास में, अब वो स्टेशन लगा था, अभी जरा ऐसे स्टेशन से सुन। तो कहा कि ये इंद्रियां मन ये जीवत्व के कारण नहीं है। सांस चल रही इसलिए अपन जिंदा है कि नहीं? अरे एक डॉक्टर साहब बोले कि अगर बीपी तुम्हारा 20-25 रह जाए तो हम डिक्लेयर कर देते मर गया, तो वो जाने ही वाला है, हम जिंदा कैसे? तो जीवत तो घटाया कि तू 10 प्राण से नहीं जीता, तू चेतन प्राण से जीता है सदा का। और दूसरी चीज, मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, तो एक माता पिता ने मुझे आत्मा को पैदा किया कि नहीं किया? नहीं किया। देह को पैदा करने में निमित्त है वो भी, तो वो जीवत तो उससे नहीं है, ना 10 प्राणों से ना ब्रजवीर से, सीधा लिखा उसमें। और 14वें बोल में आए नेहनाकार नहीं है। नेहन कहते हैं द्रव इंद्री को, ये लिंग है, पुरुष है, बालक जन्मा, कौन है? लड़का हुआ, योनी है, लड़की हुई, बोलते ना दुनिया में सब चल रहा है। तो ये आत्मा का स्वय लक्षण है क्या कि नहीं है? तो आत्मा मेहनाकार नहीं है, नेहन इंद्री को। और उसके बाद इसका प्रतिपक्षी लिया 15वें बोल में, अमेनाकार नहीं है। अमेनाकार माने, अब जब मेनाकार नहीं तो फिर क्या रहा? शरीर आकार नहीं रहा ना, मेनाकार में शरीर आकार मुख लिया, जब शरीर आकार नहीं रहा तो क्या रहा? तो पूरा यूनिवर्स जितना एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ऐसा पाखंडियों के मत में प्रसिद्ध है, उनका ये साधन है। तो कहते ऐसा भी नहीं है, वो तो अपने स्वच्छेद प्रमाण और व्यवहार से कहा तो देह प्रमाण ही रहता है, आकार उसका कहा जाए। अथवा जैसे अनिर्दिष्ट संस्थान में बताया जाता है कि बताओ आत्मा का आकार कैसा होता है? सर्कुलर नहीं, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, कैसा होता है? कैन नॉट बी डिस्क्राइब, के गोल, चौकोर, के वर्ग, के आयत, ऐसा कुछ आप डिस्क्राइब, फिर क्या कहें? अनिर्दिष्ट संस्थान। तो मेनाकार भी नहीं है, अमेनाकार भी नहीं है। अब आचार्य के शिष्य के सामने समस्या है, हम आत्मा को समझे अनुभव कैसे? ना आकार बताते हो, ना प्रकार बताते हो, ना इंद्रियों से जानने में आता है, ना मन से भी अनुभव में आता है। अगर आप कहते अनुभव करो, आत्मा का अनुभव करो, पहले कहते तुमको हम ये नास्ति क्यों कर रहे हैं कि तुमने इनसे अपने स्वरूप अस्तित्व की अस्थि मान रखी। हम कितना ही समझाए तुम घूम फिर करके इंद्री ज्ञान से ध्यान में बैठोगे ना? तो एक बोला मुझे बहुत लगाता ध्यान तो सफेद सा देखा कुछ, क्या देखा वो? सफेद सा कुछ देखा, वो देखा वो क्या देखा? आत्मा था वो। तो इसकी कल्पना के घोड़े दौड़ाता है तो अरूपी को रूपी की तरह ताकत लगा के देखना चाहता है, कुछ दिख जाए मुझे कहां आत्मा है, कैसा आत्मा है।
तो आचार्य कहते पहले ये मिट्टी के घड़े को डंडा मारो, उसके साथ इंद्रिया भी दे और वो ज्ञान दीप है जो वहां से बात करो। तो उसके बाद अब वो अमेय नकार नहीं रहा, सोलहवां बोल क्या है, द्रव वेद भाव वेद वाला नहीं, न्याय का वाच्य बनता ना, देखो स्त्रियां अलग बैठी हैं, पुरुष अलग बैठे हैं, आप कैसे कहते तो भेद नहीं है, ये आत्मा का स्वय लक्षण नहीं है। और भाव वेद माने जो होते ना आगम के अनुसार कि स्त्री वेद के उदय से पुरुष की अभिलाषा होती है, पुरुष वेद के उदय से स्त्री की अभिलाषा होती है, नपुंसक वेद के उदय से दोनों की अभिलाषा होती है। ये जो भाव वेद है ये क्या जीव का लक्षण है कि आत्मा अपगत वेदी है, तो ये भी आत्मा का जानने का पहचानने का लक्षण नहीं। और उसके बाद फिर आता है सत्रह में बोल, अभी यहां नग्न दिगंबर कोई मुनि रह जाए कैंपस में कंपाउंड में तो अपन क्या बोलेंगे, हमारे दिगंबर मुनिराज पधारे, व्यवहार में यही कहेंगे। तो आत्मा दिख गया तो क्या दिखा, जो कुछ दिखाई देता है वो आत्मा होता ही नहीं क्योंकि इंद्रियों से दिखता है, जो कुछ सुनाई देता है वो भी आत्मा नहीं, पांच इंद्रियों का विषय रूपी पुद्गल ही होता है, इसलिए स्वानुभव में इंद्रियों का कोई रोल नहीं होता, उसको पहले आउट कर दिया जाए। मन का रोल है समझने में, समझाने में, और उसको अप्रोच रोड की तरह मान के चलो। तो वो कहते हैं चौथे बोल में कहा था अनुमेय मात्र नहीं, मैंने तेरा ज्ञान मन ज्ञान से अनुमान तो लगाएगा कि ज्ञान स्वाभाविक कैसा हूं, कैसा आकार वाला हूं आदि, देहाकार आदि वो सब बताएंगे। तो इस तरह से लेकिन अनुभव के लिए मन का अवलंबन भी नहीं रहता, विकल्प रहे मैं ज्ञायक हूं ऐसा विकल्प भी अनुभव से खाली है, अनुभव नहीं होने देता। और उसके बाद मैंने उसमें कहा धर्म के बाह्य चिन्ह यति है, मुनि है, चुल्लक कारिका है, ब्रह्मचारी है, त्यागी है, तपस्वी है, श्रावक है, श्राविका है, ये सब जो कुछ है ये धर्म के चिन्ह कहे जाने पर भी ये आत्मा के चिन्ह है ही नहीं, बन सकते नहीं। अब इसके बाद जब ये सब नास्ती नास्ती चली गई, थोड़ा छठवा बोल अस्थि का बताया था, स्वभाव से प्रत्यक्ष ज्ञाता है, और उपयोग का लक्षण बताया था कहां से सात में से ग्यारह में था उपयोग, यानी तुमने चिन्ह तो माना है उपयोग लक्षण, लेकिन उपयोग का तुमने कैसा स्वरूप समझा, तो उसका खुलासा उसमें किया उन्होंने कि ऐसा लक्षण वाला नहीं। और अब रहा अठारहवा उन्नीसवा बीसवा, तो खसखस के दाने होते हैं, क्या बोलते हैं आप, खसखस के दाने बोलते हैं, कितना बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है, सरसों से भी छोटा होता है। तो एक बारदान है उसमें एक कुंटल खसखस के दाने भरे, जरा गिन के बताना कितने जीत हुए, नहीं कितना समय में गिना जाएगा, कितने गुण कितने खसखस के दाने उस बारदाने में, और ऐसे अनंत बैग भरे रखे तो कितने होंगे सब, तो आप कहेंगे अनंत। अच्छा अब उसको हम उड़ेल दें तो सब बिखर जाएंगे ना, अलग वो तो बिखर जाएंगे। तो मुझे आत्मा में आत्मा को समझा ना, तो विशेष गुणों के द्वारा मुझ में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, श्रद्धा वीर ये सब बतलाए ना, शक्तियां हैं। तो कैसे है जैसे बाहर दाने में खसखस दाने भरे, ऐसे अरे सामान्य गुण अगुरु लगत है, जहां एक गुण वहीं पर अनंत गुण के प्रदेश, और फिर भी उनका स्वय स्वय कार्य चल रहा है। देखो छायक सम्यक कहां होता है, कौन से गुण स्थान में, चौथे में होता है, पांचवे में हो जाए, सातवें में भी हो जाए, लेकिन कहां से प्रारंभ, चौथे से। छायक ज्ञान कहां होता है, अरहंत को केवल, छायक चरित्र कहां होता है, अरहंत से पहले बारहवें में यथा क्या चल। अरे इन गुणों में आपस में दोस्ती क्यों नहीं है, एक सही भाई छाये तो ज्ञान भी छाये चारित्र सब हो जाना था, सब दोस्ती एक साथ रहेंगे, लेकिन हम तुमसे कोई बंधे नहीं कि हम तुम्हारे कई अनुसार चलें, हम अपने अनुसार चलेंगे। ये इतनी द्रगुण पर्याय की स्वतंत्रता समझना ही बतला रहा। तो कोई जीव ने ऐसा मान लिया मेरे में गुण विशेष से मैं अभेद को भेद वाला मानने का, तो कहते गुण विशेष से या गुण भेद से अनालिंगित, गुण विशेष से आलिंगित नहीं है ऐसा मैं अभेद आत्मा हूं, यानी यहां सामान्य त्रिकाली को उर्द किया। और फिर 19वें बोल में और पर्याय विशेष कि ये राग देश मलिन पर्याय तो बेली बाहर निकाल दी, कहां पे कौन से बोल में, या सूर्य का दृष्टांत दिया था 10वें बोल, वो स्वरूप आत्मा ही नहीं है उसकी बात ही क्यों करना। देखो तो बाल नाखून होते ना शरीर में, होते हैं कि नहीं होते, ये किसके हैं? आप नाखून काट के रख दें, बाल काट के रख दें, हम पूछे किसके हैं, क्या बोलोगे? ये मेरे, बाहर में तो यही बोलेंगे ना व्यवहार। और इस शरीर का बाय प्रोडक्ट जो जो है, नहीं आया सुन, आ गया आ गया, मलमूत्र पसीना आदि सब नव मल द्वार श्रवण निश्वास, वो मेरा है कि नहीं है? नहीं है। हमारे यहाँ भाई साहब भी आए थे, डॉक्टर साहब भी थे, केसली में पंचकलाणक हुआ था, टेंट लगे थे गांव में, तो एक बेचारे वृद्ध सवेरे उठे जल्दी 4 बजे सबुज को गए, जंगल था सब, मेरी फुपाजी ने कराया थी पंचकलाणक, पता है सब, दो भाई दोनों लड़के, अब जल्दी गए, प्रेशर बढ़ा तो थोड़ा दूर टेंट के पास बैठ गए, आ गए, अब सवेरा हो गया, कोई देख रहा है वृद्ध बेचारे से, अब धोती दुपट्टा पहन के वो जा रहे पूजन को, अब जल्दी में भूल गए कि मैं यहां गया था, और पैर लग गया उसमें, भयंकर गुस्सा है उनको, इतना भी नहीं समझते लोग, चलो दूर चले जाते। तो किसी ने कहा, मैं सुन रहा था, बाबा जी आप ही तो कहते, नहीं नहीं मैं इतना नहीं स्वीकार, अच्छा वहां तो नहीं स्वीकार है, क्या ये प्रवचन साथ स्वीकार कराएगा? एक सुनवासी का था, जब बीमार पड़े तो डॉक्टर बोला पैथोलॉजी टेस्ट होगा, जाओ कल एक शीशी में मूत्र लाना, एक में मल लाना, खखार कफ लाना, होता है कि नहीं पैथोलॉजी टेस्ट? अब वहां लाइन में लगा शीशी रख रहा है, नंबर रख रहा, तो कोई बदल नहीं जाए कि बाबू भाई की मेरी शीशी हो जाए मेरी इनकी हो, वो किसका है? वहां मेरा हो गया। तो आचार्य कहते हैं तुझे अपना टेस्ट कराना है, रोग का निदान कराना है, तो तेरा कहना पड़ेगा, कैलवन कैलवन तेरे में तूने किया है, अपने पुरुषार्थ के अपराध से ये सब डाला हमने चंद्राचार्य ने समय सारी तू 60 गाता, अपने पुरुषार्थ के अपराध से ये विकार रूप प्रण हुआ, ना कर्मों का दोष कि साहब इनने गालियां दी इसलिए मुझे गुस्सा आया, तो सुनी तो सबने थी। तो वो पर्याय विशेष की जहां बात की, करे शुद्ध निर्मल पर्याय भी तू नहीं है, तू सामान त्रिकाली एक रूप रहने वाला स्वभाव, अपन इनको 3 प्रवचनों में समय होने वाला है, तो इसके बाद अपन कल भी ये बोल जिससे कि पूरे पकड़ में आए, अभी तो बहुत सामान्य चर्चा की। तो ऐसा तू पर्याय विशेष तो वो होगी, तुम अरण सिद्ध होगी, समय दृष्टि होगी, पर्याय की पिक्चर तुम वर्तमान में कुछ हो के नहीं, सब बोलते हैं कि मैं हूं, मैं का सॉरी। तो आचार्य कहते एक है और एक है होना, एक होता है और एक होता है होना, है वो द्रव स्वभाव, होना होना वो पर्याय स्वभाव, तो तू है को तो स्वीकार करता नहीं और होने होने के लिए रोता रहता, जिसमें से होना है उस है की दरकार नहीं, स्वीकार नहीं, कि साहब वो तो दिखाई नहीं देता। तो आचार्य कहते हैं तो देखने की आंख है तुम्हारे पास, तुम देख सकते हो, हम तुम्हें सिर्फ इशारा करके बता सकते हैं, और जब तुम्हें वो दिख जाएगा तो 5वीं गाथा में जैसा कहा है, दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तणे निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण, न छल ग्रहो स्खल न भय। तो शब्दों के माध्यम से अप्रोच होगी, बतलाएंगे। लेकिन जैसे अभी कहा ना, शब्द ने, अर्थ ने और ज्ञान ने, शब्द में भूल नहीं है, अर्थ में भूल नहीं है, भूल कहाँ है? ज्ञान। वो भूल निकालने के लिए आचार्यों ने ये 20 बोल रखे। कल इसका अपन इसका विस्तार से और देखेंगे, अभी बहुत सामान्य, अभी है 2 मिनट है, 2 मिनट है। जिस घड़े का मैंने दृष्टांत दिया, वो घड़ा बहुत बड़ा रखा है माटली का, उसमें से दूसरा दृष्टांत थोड़ा बना दूं, बता दूं, और उसमें दीपक रखा है और ऊपर ढक्कन रखा है और अमावस्या की रात्रि है, मान लो इस कैंपस में रखा है, इधर रखा है हॉल में, और उसमें चारों ओर ऊपर की साइड में 5 छिद्र है। कितने? 5 छिद्र है। आप हम बाहर से आएंगे तो क्या दिखाई देगा? कुछ दिखाई देगा कि नहीं? उन 5 छिद्रों से प्रकाश निकल रहा है और सीधा छत को टच कर रहा। अब अपन बाहर खड़े हैं और देखें ये प्रकाश किसका है, किसका? जवाब सोचो, बोल माने, ये प्रकाश किसका है? अरे दीपक कहाँ दिखाई दे रहा है? अभी वो दृष्टांत में उसको इतना ही, लोग बाहर खड़े हैं और अपन देख, ये प्रकाश किसका है? घड़े का। दिलीप भाई बोले घड़े का। फिर इन्होंने आके माने थे दरवाजा खोल दिया, भैया अंदर चल के देखो। अंदर पास पहुंचे तो फिर क्या बोले दिलीप भाई? छेदों का है। दीप काय में से आ रहा है प्रकाश? छेदों में से आ रहा है ना, तो छेदों का है कि नहीं प्रकाश? अभी तो ये कहेंगे ना, घड़े का है, फिर छेदों का है, फिर छेदों का तो नहीं हो सकता, अंदर से आ रहा है। वो अंदर तो दिखता नहीं, क्या है अंदर? प्रकाश होता तो दिख रहा है ना, तो इतना तो स्वीकार होता है कि अंदर कोई प्रकाश पुंज पदार्थ है। तो ये शरीर एक मिट्टी का घड़ा है, इसमें 5 इंद्रिय रूपी छिद्र है, इनसे क्या हो रहा है? ठंड गर्म का ज्ञान हो रहा है, स्पर्श इंद्र, रस आदि का ज्ञान, घ्राण से दुर्गंध सुगंध का ज्ञान, वर्ण का, इनके जितने भेद प्रयोग है, शब्द का। तो ये ज्ञान किसमें से आ रहा है? ज्ञान तो आ रहा है ना, आ रहा है माने अनुभव, किसमें से आ रहा है? कैसा इनके शरीर में से ज्ञान आ रहा है कि नहीं? उसमें से नहीं आ रहा। आंखें देखती कि नहीं देखती? तो कौन देखता है? माथा देखता है? कान सुनते कि नहीं सुनते? सब ये बैठा अनादि काल से गे ज्ञायक संकर दोष, अज्ञानी ने ऐसा माना है, इंद्रिया ज्ञायक है और बाकी बाहर की सब चीजें गे। तो इंद्रियों की खिड़कियां बाहर को खुलती है, दृश्य दिखाई देते हैं, दृष्टा नहीं दिखाई देता, गे दिखाई देते हैं, ज्ञाता नहीं दिखाई देता। तो क्या मान रहा है अनादि काल से? ज्ञान सुख सब बाहर से आता है। तो हम उसके लिए 4-5 सूत्र बोल के आपको बता देते हैं, कल फिर उसका रिपीट करेंगे संक्षेप में। वो ये है सूत्र, जैसा अभी बताया कि वो प्रकाश दीपक का है, घड़े का नहीं, छिद्रों का नहीं। किसने आके समझाया? ढक्कन खोला कहते देखो प्रकाश पुंज तो अलग है दीपक। ऐसे ही वो ज्ञान इंद्रियों का नहीं, इंद्रियों से नहीं, क्योंकि इंद्रियों नहीं, बोलिए एक बार, ज्ञान इंद्रियों का नहीं, इंद्रियों से नहीं, क्योंकि इंद्रियों में नहीं। ज्ञान गेयों का नहीं, गेयों से नहीं, क्योंकि गेयों में नहीं। दो है ना, टीवी से ज्ञान होता कि नहीं होता? अब समय हो रहा है, कल उसको विस्तार करेंगे। दूसरा, तीसरा बोल, ज्ञान किसका नहीं? और सोचो आगे, राग का नहीं, कसाय का नहीं, कसाय से नहीं, क्योंकि कसाय में ज्ञान नहीं। तो स्वराग से ज्ञान होता है कि नहीं? तो कल विस्तार कर। चौथा, उजाले से ज्ञान होता कि नहीं? तो ज्ञान प्रकाश का नहीं, जड़ प्रकाश का नहीं, प्रकाश से नहीं, क्योंकि इस जड़ प्रकाश में ज्ञान नहीं। तो फिर किसका अस्थि से? इतना बहुत सारे बोल आप बना सकते हैं। ज्ञान आत्मा का है, आत्मा से है, क्योंकि इतने सारे बोल इसमें से अपन निकालेंगे, घटाएंगे। अभी समय हो गया, दिनवाणी
जीव रोग संग।